bisa dipilih sama siapa. Mbak Cendra ini जिसमें प्रवेश कर प्रजा रच रहा हूँ वो प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए। मनुष्य तो इन बातों को नहीं जानते। तो वो प्रजापिता कौन है जो यहाँ होना चाहिए मनुष्य शक्ति पर। ये एक ही कॉलेज है जहाँ सब पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? 500 करोड़ को पढ़ाने वाला एक सुप्रीम सोल बाप प्रजापिता के थ्रू माने 500 करोड़ प्रजा को पढ़ाने वाला। मुरली सब जगह आ जाती है, फिर कोई की बुद्धि सतो प्रधान है, कोई की सतो, कोई की रजो, कोई की तमो, कोई को बिल्कुल ही धारणा नहीं होती। तो जिनको धारणा नहीं होती है उनके कर्म भी ऐसे ठहरे। कैसे? धारणा ही तो बाप इसमें क्या करे? सब तो एक समान हो भी नहीं सकते। ये ईश्वरीय कॉलेज है, ईश्वर पढ़ाने वाला एक है। जिनको पढ़ाते हैं वो धारण करके फिर टीचर बनते हैं पढ़ाने के लिए। हर एक को देखना चाहिए मेरी सतो प्रधान बुद्धि है, मैं मम्मा बाबा मिसल समझा सकता हूँ, समझानी कैसी होनी चाहिए? जैसे मम्मा बाबा की समझानी है वही समझानी होनी चाहिए। अगर समझानी उलट हो जाए तो सर्विसेबल हुए या डिससर्विस करने वाले हुए? अब तो डिससर्विस करने वाले कहे जाएंगे। बाबा के पास तो सब सेंटर्स का समाचार आना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स रेगुलर आते हैं। समाचार भेजेगा कौन है? टीचर्स, क्योंकि टीचर्स ही चैतन्य सेवा केंद्र है। अगर वो चैतन्य सेवा केंद्र जो चैतन्य सेंटर है वो टीचर्स हैं वो बाबा के पास पूरा समाचार न भेजें अथवा समाचार भेजें ही नहीं, दूसरों से समाचार मिलता रहे बाबा को लेकिन टीचर समाचार न भेजे तो ऐसे टीचर को क्या कहा जाएगा? माता पिता के अनुकूल टीचर है या प्रतिकूल है? और फिर उससे जो स्टूडेंट्स तैयार होंगे वो कैसे तैयार होंगे? वो भी प्रतिकूल तैयार होंगे। तो बताया कि बाबा के पास सब सेंटर्स का समाचार आना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स रेगुलर आते हैं और कब से पवित्र रहते हैं। क्योंकि जैसा रचयिता होगा वैसी ही रचना होगी। रचयिता पवित्र नहीं होगा तो रचना भी पवित्र नहीं रह सकती। बाप को सब पोता मेल का मालूम पड़ना चाहिए। जो टीचर ही अपना खुद पोता मेल ना देती हो तो स्टूडेंट्स कैसे होंगे? وہ بھی اپنا پوتا مل چھپانے والے یا نہ دینے والے ہوں گے. باپ کے پاس بچوں کے تن کا دھن کا من کا پورا حساب کتاب ہونا چاہیے, تو کہیں گے کہ وہ باپ کے سچے بچے. کیونکہ ماتا پتا بڑے ہیں نا, جگدمبا ماں بھی تو بچی ٹھہری. کس کی بچی ہے؟ بچی مانا رہتے نا, کس کی بچی ہے؟ ہاں باپ کی بچی ہے نا. یہ بابا اس دنیا کا انوبھوی ہے. ڈراما میں مکھیا ایکٹرس دیکھے جاتے ہیں. باپ نے یہ بھی رکھ لیا ہے. بھی کیوں لگا دیا؟ یہ بھی رکھ لیا ہے, ضرور کوئی اور بھی رکھے. تو یہ بھی رکھ لیا ہے, ضرور کچھ تو ہوگا نا. ایسے تو نہیں جو رکھ لیا ہے وہ کچھ بھی نہیں. آدی دیو برہما کا کتنا نام ہے, منشی نہیں سمجھتے ہیں آدی دیو کس کو کہا جاتا ہے. واسطو میں آدی دیو اور آدی دیوی ماتا پتا یہ بن جاتے ہیں. کب؟ آدی دیو آدی دیوی ماتا پتا یہ بن جاتے ہیں. کب بن جاتے ہیں؟ بعد میں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کے مکھ سے سرسوتی ماں نکلتی ہے. تو سب بچے ہو گئے. یہ کہتے ہیں میں شیو بابا کا بچہ بھی ہوں تو ان کی بننی بھی ہو. کیونکہ مجھ میں پرویش کر میرے مکھ سے بچے پیدا کرتے ہیں. تو کتنی گہری باتیں. کیا گہری بات ہوئی بھائی؟ ابھی باپ بتایا 500 کروڑ کا باپ, پرجا پتا, ساری سستی کا پتا. تو وہ ہوا آدی دیو, کیونکہ ساری منشی سستی کا پتا ہے. پھر اس آدی دیو کے دوارا جو پہلی پہلی رچنا رچی گئی وہ بھی ہو گئی رچنا. مانا بچی, کیونکہ پہلی پہلی پرش کی رچنا کون ہوتی ہے؟ استری. تو یہ ہو گئی بننی. یگ کے آدھ میں بھی ایسے ہوا تھا, اور جو آدھ میں ہوا تو انت میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. کیسے ایسے ہی ہوتا ہے؟ آدھ میں تو وہ چولے دوسرے تھے اور انت میں چولے تو بدل جاتے ہیں. بل چولے بدل جاتے ہیں لیکن آتما وہ نمت بنتی ہے. پرجا پتا اور برہما, تو یہ ہوئے مات پتا. آج میں سرسوتی بچی نکلی. سرسوتی بچی کہو राधा कहो तो अंत में भी राधे सो अनुराधे जरूर बनती है। तो बताया इनके मुख से सरस्वती माँ निकलती है तो सब बच्चे हो गए। तो यह कहते हैं माने किसकी तरफ इशारा किया है? ब्रह्मा की तरफ। ब्रह्म माँ, बड़ी माँ जो सारे जगत की माँ है उसकी तरफ इशारा किया। मैं शिव बाबा का बच्चा भी हूँ। उस समय तो टाइटलधारी की ब्रह्मा की बात थी। जिस समय ये वाक्य बोला गया वही टाइटलधारी ब्रह्मा फिर किसी शरीर ब्राह्मण शरीर में ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती अपना शरीर छोड़ करके। तो वो शिव बाबा का बच्चा कैसे हुआ? क्योंकि पहले तो तन पुरुष का था। बाबा कहते हैं मैं भी जादूगर हूँ, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बना देता हूँ। ब्रह्मा नाम है काम के आधार पर, अर्थ है बड़ी माँ, और तन कौन सा है? पुरुष का। पुरुष का तन होते हुए भी उसको क्या बना दिया? स्त्री माता बनाई दिया। और वही ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला जिसने माँ का रोल अदा किया वो फिर शरीर छोड़ करके फिर प्रवेश करता है। और जिस स्वरूप के द्वारा ब्रह्मा बड़ी माँ जगदम्बा बनकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है वो स्त्री चोला होता है। उस स्त्री चोले के रूप के द्वारा कह दिया कि ये भी बच्चा है। यह कहते हैं मैं भी शिव बाबा का बच्चा भी हूँ तो उनकी बन्नी भी हूँ। ये दो बातें कहते होंगे, बच्चा तो मेल होता है और बन्नी तो फीमेल होती है। तो बच्चा किस आधार पर कह दिया और बन्नी किस आधार पर कह दिया? पुरुष का तन तो चला गया, वो पुरुष तन वाली आत्मा ब्रह्मा ने शरीर छोड़ करके कोई बच्ची में प्रवेश किया जो बच्ची संसार में जगदम्बा नाम रूप से प्रख्यात होती है। तो वो जगदम्बा का रूप बच्चा कैसे हुआ? बन्नी तो चलो हो गई क्योंकि स्त्री चोला, बच्चा कैसे हुआ? हाँ, स्वभाव तो संस्कार की बात है कि रुद्रमाला के मण के जो भी होते हैं भले स्त्री चोले में हो तो भी स्वभाव संस्कार से वो अनेक जन्मों के राजा बनने वाले पुरुष पुरुष संस्कारों के। तो इसलिए बताया यह कहते हैं मैं शिव बाबा का बच्चा भी हूँ तो उनकी बन्नी भी हूँ क्योंकि मुझ में प्रवेश कर मेरे मुख से बच्चे पैदा करते हैं। उस समय तो थी निराकार ज्योति बिंदु शिव बा शिव की बात, वही निराकार शिव ज्योति बिंदु फिर साकार रूप धारण करता है निराकार स्टेज वाला अंत में और वो दिलो दिमाग में प्रवेश कर जाता है। इसके स्त्री के दिलो दिमाग में कौन प्रवेश करता है? उसका पति। तो बताया कि मुझ में प्रवेश कर मेरे मुख से बच्चे पैदा करते हैं तो ये कितनी गुह्य बात है। तीसरा पेज, तत्व प्रधान बुद्धि वाले बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझ सकेंगे और जो तमो प्रधान बुद्धि होंगे वो ये बात समझ नहीं सकेंगे ये अम्मा बाप हमारी कैसे, वो फिर विरोध पैदा करें क्योंकि नंबरवार तो होते ही रायल घराने और प्रजा में तो फर्क रहता है ना। प्रजा भी अपने पुरुषार्थ से बनती और राजा भी अपने पुरुषार्थ से बनते हैं। जो प्रजा बनी तो प्रजा बनने वाली आत्माएं कौन सा पुरुषार्थ करती है? जो प्रजा बनती है और राजाओं ने कौन सा ऐसा पुरुषार्थ किया जिससे राजा बने? प्रजा तो बड़ी ढोती है और राजा और राजा का राजघराना आनंद करता है। आधा में जाम आधा में रैयत कही जाती है, यानी जितनी धन संपत्ति राज्य की पैदा होती है उसमें से आधा में राजा और राजा का राज परिवार पलता है और आधे में सारी प्रजा पलती है। तो प्रजा ने ऐसा कौन सा कर्म किया जो उसको बड़ी ढोनी पड़ती है सारी जिंदगी भर राजा और राजघराने के लिए? ये पुरुषार्थ कब होता है? इसी संगम युग पर इस पुरुषार्थ की फाउंडेशन पड़ती है। जो प्रजा वर्ग की आत्माएं हैं वो अपनी जिम्मेवारी फील नहीं करेंगी, क्योंकि प्रजा बनती ही तब है कि परमात्मा का संदेश ले लिया और संदेश लेने के बाद आए और गए, कोई जिम्मेवारी नहीं उठाई, कोई पवित्र रहने का पुरुषार्थ नहीं किया। स्वर्ग कैसे बनेगा, कब बनेगा, कोई इन बातों पर चिंतन नहीं। एक कान से सुना और जैसे दूसरे कान से निकाल दिया, लेकिन संदेश तो मिल गया। तो ऐसी आत्मा जो पुरुषार्थ नहीं करती है वो प्रजा बन जाती है। प्रजा में भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई साहूकार होते हैं, कोई दासदासी होते हैं, कोई चंडाल भी होते हैं। और जो आत्मा पुरुषार्थ करती है पवित्रता का, वो राजा बनती है या राजघराने में आ जाती है? तो वो जरूर रेगुलर स्टूडेंट भी बनेंगे। राजघराने में आने वाले जो 16108 आत्माएं हैं प्रिंस प्रिंसेस बनने वाली, वो जरूर बाप के प्रति नंबरवार सरेंडर्ड की लिस्ट में भी आएंगे, तब राजघराना बनेगा। तो बाप कहते हैं तुम अच्छा पढ़ेंगे तो ऊंचे पद पाएंगे, क्योंकि ऊंचे नीचे पद तो बहुत है। वारिस जो बनेंगे वह तो अंदर रायल घराने में ही आएंगे। वारिस माना बच्चे। बाप कहते हैं पूरा पुरुषार्थ करो, मैं तो आया ही हुआ हूँ राजाई देने के लिए, तुम पुरुषार्थ करोगे तो तुमको राजाई तो दूंगा ही, क्योंकि मेरे आने का मकसद ही है राजा ही देना। मैं राजयोग सिखाने आया हूँ, प्रजा योग सिखाने के लिए नहीं आया हूँ। राजयोगी कौन बनते हैं? जिस राजयोग में रास भरा हुआ है, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। राजा बनने वाली आत्माएं स्वाधीन होंगी, वो एक बाप के सिवाय और किसी के आधीन होने वाली नहीं होंगी। और जो प्रजा होगी उसमें आधीनता के संस्कार होंगे, बाप को नहीं पहचानेंगे, माता को नहीं पहचानेंगे। जो पावरफुल सोल दूसरी उनके सामने आएंगी बस उन्हीं से प्रभावित हो जाएंगे। तो प्रभावित माना प्रजा, पुरुषार्थ करना है। हम माता पिता से स्वर्ग की बात सही कवर कर ले, नहीं तो क्षत्रिय बन पड़े। अगर बाप से वर्षा नहीं लिया डायरेक्ट तो क्या बन जाएंगे? क्षत्रिय। तो बाप से वर्षा लेने वाले तो सिर्फ सत्युग के पहले जन्म के, यानी 21 जन्मों में से जो पहला जन्म है उसी में कुछ विशेषात्माएं होती है, 108 जो बाप से डायरेक्ट वर्षा लेती है और बाकी को तो डायरेक्ट बाप से वर्षा मिलता ही नहीं। तो वो कहाँ चली जाती है? नापास विशिष्ट में चली जाती है। क्षत्रिय बन पड़ेंगे, स्टूडेंट्स खुद भी समझ सकते हैं। उन स्कूलों में तो कोई नापास हो जाते हैं, तो जो नापास हो जाते हैं उनको फिर पढ़ना पड़े, या तो फिर दोबारा पढ़ाई होने वाली नहीं है। एक ही बार में पढ़ाई पढ़ करके बाप से जो पास हो गया तो हो गया, और जो फेल हो गया तो हो गया, यहाँ तो फिर पढ़ न सके। नापास हो गया तो नापास ही रहेंगे। इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना है। अपना धंधा ही है ये पुरुषार्थ करना और कराना। बाबा हमेशा कहते हैं ऐसे मत समझो कि सिंध में बहुतों ने घर बार छोड़ा तो हमको भी छोड़ना पड़ेगा। क्या वहां तो पाठ था, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन था। भक्ति मार्ग के फाउंडेशन से ऐसा संगठन बनाने की ड्रामा में नूद थी। तो सिंध हैदराबाद में बहुतों ने घर बार छोड़ दिए। अब ऐसा नहीं है कि सिंध हैदराबाद में बहुतों ने घर बार छोड़ा था तो अब भी ऐसा ही होगा, घर बार छोड़ करके बाप के बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय बाप बाप के रूप में पार्ट नहीं बजाय रहा था, और इस समय बाप बाप के रूप में पार्ट बजाय रहा है, राजयोग सिखाए रहा है। ये भी कह रहा है कि निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग नहीं सिखा सकते, प्रवृत्ति मार्ग वाले ही निमित्त बनेंगे। प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग सिखाने के तो कहाँ रहना पड़े, घरघाट छोड़ना पड़े या घरघाट में रहना पड़े? जरूर घरघाट में रहना पड़े। तो अब वो परंपरा नहीं चलने वाली है कि घरघाट छोड़ करके सरेंडर हो गए, बाप के बन गए और बस हमें घरबार से कोई मतलब ही नहीं। नहीं, बाप के बन गए वो तो अच्छा किया, तन मन धन से सरेंडर हो करके रहना माना बाप की मत पर चलना, जैसे चलाए वैसे चलना। लेकिन ऐसे नहीं है फिर जीवन भर के लिए जैसे पट्टा लिखाई लिया कि बाप के कंधे पर चढ़ के रहेंगे। नहीं, जिस घर परिवार से आए हैं उस परिवार का हाँ उजूरा पूरा करना है। और ये बाबा ने भी कहा माउंट आबू जब आए तो बाबा ने कन्या माताओं को कहा जिस परिवार से आई हो उनका जाकर के कल्याण करो। तो बहनों और बहुतों ने उल्टा अर्थ समझ लिया, उन्होंने समझा बाबा के पास अब पैसे खलास हो गए इसलिए बाबा हमको यहाँ से भट्टाएं दे रहे हैं। तो जिनको निश्चय नहीं था वो छोड़ करके चले गए, कोई न किसी का पल्ला पकड़ा, कोई न किसी का पल्ला पकड़ा, दुनिया में चले गए। और जिनको निश्चय था वो बाबा के डायरेक्शन के अनुसार चले गए, जहां बाबा ने भेजा वहां जाकर के सर्विस की और सर्विस करके सफलता पाई। क्योंकि बाबा तो बच्चों को सन्यासी नहीं बनाना चाहता। हाँ, लायकात तो लानी है, पावर भी भरनी है। तो जिन बच्चों ने बाबा के डायरेक्शन को फॉलो किया वो सुन कम सुन करते रहे, बाबा से शक्ति लेते रहे,
ان بچوں نے پراپتی کی. آج بھی وہ پراپتی کی لسٹ میں ہے. ان کا جتنا بھی پرست ہے وہ یہاں سنگم یوگ میں بھی لے رہے ہیں اور بھوشیہ میں بھی لیں گے. تو اس لیے بتایا کہ ابھی بھی ایسے ہی ہے. آدمی تو چھوڑ چھاڑ کر کے بچی بننے تھی, اب کوئی چھوڑ چھاڑ کر کے بچی بننے کی بات نہیں. پہلے تھی 14 یا 4 سال کی بچی اور اب ہے 7 روز کی بچی. 7 روز کی بچی میں بھی کوئی بہت پاورفل بن سکتا ہے اگر وہ بچی اسموتھلی پوری ہو جائے, کوئی سنگھرش منسا میں نہ آئے. تو گھر بار چھوڑنے کی بات نہیں ہے کہ ہم کو بھی گھر بار چھوڑنا پڑے گا, نہیں. بابا تو صرف لائقہ دیکھنا چاہتے ہیں بچوں کی. لائق ہے تو بابا نہیں لوڑو, نہ لائق ہے تو جان سروس کرنے جائے گا تو کیا بنائے گا, نالے کی بنائے گا نا. تو بتایا کہ یہاں چھوڑنے کی بات نہیں ہے, یہ تو ڈراما میں پہلے نود تھی, باقی کوئی بھگانے آنے کی بات نہیں. بھگوان کا برا کام تھوڑے ہی کریں گے, یہ جھوٹے کلنک لگائے یہ کہ آدمی بھی لگائے تھے اور اب بھی لگیں گے. تم بچے جانتے ہو پہلے نمبر میں یہ مما بابا پکڑاتے ہیں. تم بھی پھر بابا مما کے سب تک ہی پاتے ہو. کیا بات ہوئی, پہلے نمبر میں مما بابا, پھر جیت پانے والا پہلا نمبر ہوا یا مما بابا پہلے ہوئے؟ جیت پانے والا پہلا ہوا پھر تو وہ تو پلس میں آ جائے گا. تو پھر یہ بات تو رنگ ہو گئی کہ پہلے نمبر مما بابا پت پاتے ہیں. مما بابا کون اور مما بابا پر جیت پانے والے کون, ان کے تخت پر جیت پانے والے کون ہوئے؟ تتھا کتھت براہمن کہیں گے کہ مما بابا برہما سرسوتی, اور ان کے تخت پر جیت پانے والے وشو کشور بھاؤ اور کمار کا دادی. دیکھو دادا نے اپنے جیون کال میں وشو کشور بھاؤ کو سارے یگ کا سارا بار سونپا ہوا تھا. بابا کا سب سے جاسی وفادار اور بانبردار بچہ تھا. اور کنیا ماتاؤں میں کمار کا دادی مرلی میں بولا ہوا بھی ہے. ان سب ستاروں میں سب سے جاسی خاصی ہوتی ہے کمار کا. تو شوٹنگ پیریڈ میں مما بابا کے بارے سر کون بنے تھے؟ بشور بھاؤ ماں بار سر بن گئے. لیکن مما بابا کا بار سر بننا ہے یہ تو میرے ماتا کے پتا تو میرے سپریم سول باپ کا بار سر بننا ہے. بار سر کس کا بننا ہے؟ سپریم سول باپ کا بار سر بننا ہے. کیونکہ سپریم سول باپ کی جو مالا ہے وہ ہے رودر مالا. سارے وشو کے بیج روپ آتماؤں کی مالا اور اس مالا روپی سنگٹھن کا بھی جو یگل من کا ہے مات پتا. ان کے لیے بتایا کہ تم ہو مما بابا کے بھی تخت پر جیت پانے والے, تو تم کون ہوا اور مما بابا کون ہوئے؟ جس سمے واڑی چلی جا رہی ہے مما بابا کون ہوئے؟ برہما سرسوتی یعنی دادا لے کر آج روم راہ. اور تم کون ہوا؟ پریا پتا اور جگدمبا آج والی آج. تو ان پریا پتا جگدمبا میں ہی وہ مما اور بابا والی سول پرویش کرتی. कदम्बा मैं ही वो मम्मा और बाबा वाली स्वयं प्रवेश करती है। तो उनके लिए कहा कि तुम तत्व पर जीत पाते हो, जो पहला नंबर होगा वो फिर नीचे उतर जाएंगे। एडवांस नॉलेज निकलने तक समझते थे कि पहला नंबर है मम्मा बाबा मान ब्रह्मा सरस्वती मानो ओम राजे और दादा देव किसी उन। जीत पाने वाली तो मम्मा बाबा तत्व पर बैठा, फिर बच्चा बनेगा तो मम्मा बाबा सेकंड में चले जाएंगे, पहले वाले राजा रानी से छोटे हो जाएंगे। तो प्रसाद करके बाबा मम्मा के तत्व पर जीत पहननी चाहिए। अभी नहीं जीत पानी है ये भी बता दिया, अभी माना कब उस समय ये रिजल्ट निकलने की बात बताए, जब रिजल्ट निकलने का टाइम आए उस समय की बात अलग। अभी जीत नहीं पानी है मुसलमानों ने कर कि बाप को मार दिया सबसे जो ऊपर जीत पाएगी भविष्य तक पर जीत पाएगी। मानो 21 जन्मों में से जो पहले जन्म का प्रारंभ है उसमें जीत पानी है। अभी तो क्या बनना है, अभी तो सेवाधारी बने, मम्मा बाबा आकर तुम्हारा वारसदार बने, ऐसे रिजल्ट लक्ष्य दे दिया कि तुमको कैसा कुछ प्राप्त करना है, ऐसा कुछ प्राप्त करना है कि मम्मा बाबा आकर तुम्हारे वारसदार बने, न कि तुम मम्मा बाबा के वारसदार बनो। तो विश्व किशोर बाबू का पुरुषार्थ क्या हुआ, वो मम्मा बाबा उनके वारसदार बनेंगे, विश्व किशोर बाबू अब कुमार जाएंगे, अथवा उल्टा होगा।
अच्छी भाषा है, अच्छी भाषा होगा
क्या
उल्टा है,
उल्टा हो गया। बाबा ने डायरेक्शन दिया है भविष्य तत्व पर जीत पानी है, कैसी जीत पानी है कि मम्मा बाबा आकर के तुम्हारे वारसदार बने माने बच्चे बने, ऐसे नहीं कि तुम उनके बच्चे बनो। तो कितनी अच्छी रीति समझाते है, सीधा नहीं बोला बाबा ने तो सीधा बोल दिया, नहीं तो ये छापा किसने है, ये मुरली तो रिवाइज हो रही है, पहले तो मम्मा बाबा ने जो वाणी जो बाबा ने चलाई थी वो तो वो लोग सामने बैठे हुए थे, फिर कई बार रिवाइज हो चुकी है, ये तो 1 में रिवाइज हुई, इससे पहले और रिवाइज हो चुकी है कई बार। तो पत्थर बुद्धि बने ना, पत्थर बुद्धि माने अहिल्या बुद्धि, अहि माने सर्प, लिया माने ले आई, जो सर्प को परमात्मा बाप की सभा में ले आई, पूरा पोता मेल नहीं दिया ना, तो ऐसी चीज की बुद्धि पत्थर बुद्धि होगी तो उसी बात समझेगी या सीधी बात समझेगी, वो तो उल्टी बात समझेगी, अंदर से कनेक्शन सर्पों से हुआ पड़ा है। और पांच दिखावा ये करते हैं कि बाबा जैसा चरित्र हमारा दुनिया कोई नहीं, बाबा तो है सबसे बड़ा आरती, सबसे बड़ा शीशा, उस शीशे में सबको अपना चेहरा दिखाई पड़ना है। तो ये ज्ञान है जैसे कि पारा, पारे की क्या विशेषता है, घिर जाता है उड़ जाता है, देर नहीं करती, थोड़ी सी अपवित्रता आई और पार निकल जाता है।
कोई बात तो जरा भी धारणा नहीं होती। पत्थर बुद्धि के पत्थर बुद्धि अहिल्या बुद्धि रह जाते। अहिल्या जिसकी पत्नी थी गौ तम, गौ माने इंद्रिया और तम माने श्रेष्ठतम। इंद्रियों का जब से जितने श्रेष्ठ से सुख होगा, देवताएं इंद्रियों का सुख भोगते हैं या ऊंची स्टेज का सुख भोगते हैं, देवताई आत्माएं जो है वो संगम में भी अति इंद्रिय सुख भोगेंगी। इंद्रियों का सुख नहीं, इंद्रियों का सुख दे भोगने वाले जो असुर है उनमें पहला नंबर है अब्राहिम, जो द्वापर की आठ से पर आता है इंद्रियों का सुख भोगने के लिए। लेकिन वो तो सत्व प्रधान सोल आती है, वो जिसमें प्रवेश करती है वो भारत की आत्मा होती है। तो वो हुआ गौतम, इंद्रियों का श्रेष्ठतम सुख भोगने वाला जिसमें इब्राहिम प्रवेश करता है। लेकिन सुख कैसा लेता है वो? इंद्रियों का सुख तो लेता है, लेकिन वो व्यभिचारी सुख होता है या व्यभिचारी? इतना सुख तो व्यभिचारी सुख होता है। तो जिनकी बुद्धि में जन्म जन्मांतर का व्यभिचार समाया हुआ है उनकी बुद्धि में ये धारणा हो नहीं सकती कि मेरा तो एक बाप दूसरा रूप। तो जब बुद्धि ऐसी बन गई तो कनेक्शन जुट नहीं सकता, कनेक्शन जुट नहीं सकता तो कार्य निकल ज्ञान सारा बुद्धि में से टूट जाता है, उसका सही रूप से मनन चिंतन मंथन नहीं हो सकता, तो फिर धारणा भी नहीं हो सकती। तो वंडर है ना, अभी तुम बच्चों को नित्य है, यहाँ तो निराकार भगवान पढ़ाते, पढ़ाने वाला कौन है? निराकार भगवान। अरे निराकार भगवान मुख से पढ़ाएंगे या बिंदु खुद खुद करेगा है? पढ़ाने के लिए मुख चाहिए ना। तो निराकार भगवान जब पढ़ाएंगे तो निराकार की चीज होगी तब तो निराकार कहे जाएंगे, ये बिंदु पढ़ाएगा? और बिंदु किसको पढ़ाएगा? बिंदु बिंदु को पढ़ाएगा, यानी बिंदु रूप स्टेज में रह करके जो बिंदु रूप स्टेज में रहने वाले रूहानी बच्चे हैं उन्हीं को पढ़ाए। तो तुम बच्चों को निश्चय है कि यहाँ पढ़ाने वाला कौन है? निराकार भगवान। साकार कृष्ण यहाँ पढ़ाने वाला नहीं है, यानी साकारी स्टेज वाला ब्रह्मा यहाँ कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा रहा। ब्रह्मा की सोल भी इस समय पढ़ाई पढ़ने वाली है, पढ़ाई पढ़ाने वाली नहीं। वो जो मुरली है या ब्राह्मणों की दुनिया का जो शास्त्र है वो पढ़ने वाला कौन है? ये शास्त्र पढ़ने वाला कौन हुआ और उस शास्त्र का सार समझाने वाला कौन हुआ? पढ़ने वाला ब्रह्मा, ब्रह्मा की सोल, क्योंकि चित्रों में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाए हैं हाथों, तो चित्र है तो जरूर चरित्र किया होगा। तो कौन से ब्रह्मा ने ये चरित्र किया है शास्त्रों को हाथ में उठाने का? दादा देशराज, उनके द्वारा तो कभी कोई शास्त्र हाथ में उठाया नहीं है। तो ये वर्तमान समय की बात है, एडवांस पार्टी की बात है कि एडवांस पार्ट में जब ब्रह्मा की सोल किसी ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके पार्ट बजाती है तो ब्रह्मा की सोल कहो कृष्ण की सोल कहो वो स्वयं शास्त्र को हाथ में लेकर के पढ़ती है। उसका हाथ करने वाली नहीं है, सिर्फ पढ़ने वाली है। और
वो निराकार था। तो एक ही शरीर और उसमें तीन आत्माएं कार्य करने वाली, एक है जिसके लिए कहा कि शंकर क्या करता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं का मतलब क्या हुआ कि उसका तो न पढ़ने का पार्ट है न पढ़ाने का पार्ट है, वो तो सिर्फ याद में रहने वाली आत्मा है क्योंकि गाया हुआ है। विश्व की बात कहीं गाय से मिलती है, योग बनती है। तो जरूर ऐसी कोई आत्मा होगी कि उसको धारणाओं की भी परवाह नहीं, क्योंकि ऐसे तो नहीं कहा कि धारणाओं से विश्व की बात नहीं प्राप्त होती, ज्ञान की बातों की भी ज्यादा परवाह नहीं, क्योंकि ये नहीं कहा कि ज्ञान से विश्व की बात नहीं चलती, और ये भी नहीं कहा कि सर्विस से विश्व की बात सही मिलती है कि बात दौड़ करो वाचा चलाओ भाषण दो, नहीं, सिर्फ क्या कहा योग बल से विश्व की बात सही। अगर योग पक्का है, मन बुद्धि जुड़ी हुई है, तो मनसा सेवा स्वतः ही होती है, कहीं भी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, कोई संगठन करने की जरूरत नहीं, स्वतः ही संगठन बनता रहेगा, क्योंकि मन बुद्धि पवित्र होगी, मन बुद्धि में प्योरिटी आएगी तो यूनिटी अपने आप बनेगी। ये तो साधु सन्यासी है नागे बाबा जो मेले वगैरह लगवाते रहते, मेले सम्मेलन आयोजन करना ये किसका काम है, ये देह अभिमानी साधुओं का काम है जो बुद्धि को एकाग्र नहीं कर सकते। अब वो टाइम बना हो गया, ये टाइम अब नहीं रहा, बहुत थोड़ा टाइम रह गया, अब तो वो ही आत्माएं विजयी होंगी जिन्होंने अपनी मन बुद्धि को अभ्यास करके एकाग्र कर लिया। अगर एकाग्र नहीं कर पाया तो अब प्राप्ति होने का टाइम जैसे चला गया, लंबे समय का जिनका पुरुषार्थ है वही अंत समय में प्राप्ति कर सकेंगे। ऐसा न हो कि हम दूसरों को देने में लगे रहे और खुद खाली हाथ रह जाए। तो बताया कि यहाँ निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं, और पढ़ाते किसको है, हाँ रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, जिस्मानी बच्चों को नहीं पढ़ाते, जिनमें देह अभिमान भरा हुआ है, इतना अहंकार भरा हुआ है कि टीचर का लकवा लेकर के बैठे, हम सिलेंडर हैं, और सिलेंडर होकर के दूर लुढ़क जाते हैं और डायरेक्शन लेने से कतराते हैं, एक चिट्ठी भी नहीं ले सकते, कोई समाचार नहीं देते। तो जब कोई समाचार नहीं दे सकते, बाप से कोई कनेक्शन नहीं रख सकते, तो फिर वो क्या करेंगे, सर्विस करेंगे, इतना अहंकार भरा हुआ है। अहंकारी कभी दूसरों को निरहंकारी नहीं बना सकता। बाप का कहते क्या है, निराकारी निरहंकारी और निर्विकारी। तो उनका धंधा क्या होगा, भोली भाली आत्माओं को खसाना, खुद नीचे गिरना और दूसरों को भी नीचे गिराना। तो यहाँ तो निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं, निराकारी निरहंकारी और निर्विकारी वो बैठ करके पढ़ाते हैं। भगवान वाली खाना, भगवान को तो तुम शरीर दे नहीं सकते, क्यों भगवान वाली कृष्ण के शरीर से, ऐसा भी तो लिखा हुआ नहीं है कि कृष्ण के शरीर से भगवान वाली किया, भगवान ने बोला नहीं, ये है भगवान वाच। कौन सा, कृष्ण तो साकार होता है, और यह जो है भगवान वाच वो किसके द्वारा, निराकारी स्पीच वाले के द्वारा, क्योंकि जितने भी धर्म पिताएं आए हैं उन्होंने अपनी धर्म की स्थापना की है, तो खुद निराकारी स्पीच वाले थे तो धर्म की स्थापना हो सकी। तो ऐसे ही उन धर्म पिताओं का भी बाप, बापों का भी जो पाप है
वो भी निराकार स्थिति वाला होता है। बाप कहते हैं पहले पहले ये दिल में आना चाहिए कि बाबा हमको बैठ पढ़ाते हैं, उनको उनको दिल में ये आ जाता है कि ब्रह्मा हमको बैठ पढ़ाते हैं। तो जिनकी बुद्धि में ब्रह्मा बैठ गया वो प्राप्ति किससे करेंगे और कौन से जन्म की प्राप्ति करेंगे? जरूर 21 जन्मों में से दूसरे जन्म की उनको प्राप्ति हो सकती है, तीसरे जन्म की, पहले जन्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पहले जन्म में तो निराकार बाप बैठ पढ़ाते ब्रह्मा पढ़ा। तो ये बुद्धि में निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। बाबा अक्षर आने से वर्षा याद आना चाहिए। बाबा कहा और बाबा माना वर्षा, क्योंकि शिव जिसमें प्रवेश करते हैं वही हमारा लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो जो लक्ष्य है और लक्ष्य को जो देने वाला है दोनों का स्वरूप एक हो जाता है, इसलिए कहते हैं बाप और वर्षा की याद करो। तो बाप और वर्षा ये दो चीजें हो गई या एक ही चीज हुई? दो को याद करें या एक को याद करें? एक को याद करना है, फिर दो को क्यों कह दिया? बाप को याद करो फिर वर्षा को याद करो। हाँ, जो बाप है वही हमारा वर्षा है। अगर बीज मुट्ठी में आ गया तो सारी शक्ति मुट्ठी में आ जाती, तो बीज है बाप, उस बीज बाप में वो सुप्रीम कोर्ट प्रवेश करता है, तो वो बाप भी है और हमारा विश्व की बादशाही का वर्षा भी। जितना हम पढ़ेंगे उतना स्वर्ग में ऊंच पद पाएंगे। किससे पढ़ाई पढ़ेंगे? उस निराकार बाप से जितनी हम पढ़ाई पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। उस निराकार बाप से पढ़ाई में पढ़ करके औरों से पढ़ाई पढ़ने लग पड़ेंगे तो उतना ही पद हमारा नीचा हो जाएगा, क्योंकि टीचर पढ़ाने वाला जैसा होगा, डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बनाए, वकील होगा तो वकील वकालत सिखाए, विश्व का बादशाह होगा क्या बनाएगा? बादशाह बनाएगा। और खुद अगर प्रजा होगा, प्रजा की लिस्ट में आने वाला होगा तो प्रजा ही बनाए। तो जितना हम पढ़ेंगे उतना उस पद पाएंगे, जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्मों का बोझा खत्म हो जाएगा। याद करने से बुद्धि सोने का बर्तन हो जाएगी। किसको याद करने से? बाप को याद करने, क्योंकि बाप है हीरो, हीरे जैसा जीवन बनाने वाला। तो हीरे की जड़त कहाँ होती है? मोस्टली हीरा कौन सी धातु में जड़ा जाता है? सोने में जड़ा जाता है। तो याद करने से बुद्धि सोने का बर्तन हो जाएगी। उस सोने के बर्तन में वो हीरा जैसे समय के बैठ जाएगी। सोना माना सच्चाई। अगर सच्चाई सफाई है, मन में कुछ और है और बाहर से कुछ और दिखाई रहे हैं तो सच्चाई सफाई नहीं है। इसलिए कहते हैं कि कथनी कर्मी एक होनी चाहिए। दान करते रहेंगे तो धारणा होती जाएगी। जो बाप हमें देते हैं वो हम दूसरों को देंगे तो धारणा होगी।
جو باتیں باپ ہم کو بتاتے ہیں وہ ہم دوسروں کو نہیں دیں گے اور الٹی ہی باتیں دوسروں کو بتائیں گے تو کیا ہوگا؟ دھارنا نہیں ہوگی اور یہ آسری دھارنا بدھی میں آ جائیں گی اور آسر بن جائیں گی. دھن دیے دھن نہ کھوتے, باپ تم پر راضی ہوگا. جو باپ کا دیا ہوا دھن ہے وہ تم دوسروں کو دیں گے تو باپ تم پر راضی ہوگا. تم برہمنا ابھیناشی گیان رتنوں کا دان کرتے ہو. ابھیناشی گیان رتن آتے کس سے ہیں؟ ابھیناشی باپ سے آتے. ابھیناشی باپ کون ہے اور بناشی باپ کون ہے؟ جتنے بھی 500 کروڑ منشیا آتمائیں ہیں وہ سب کچھ نہ کچھ پرم دھام میں پڑی رہتی ہے. ان میں سے ایک آتما ایسی ہے جو صرف ایک سیکنڈ کے لیے نام ماتر پرم دھام جانا ہوتا ہے اور پھر واپس جنم مجھ پر آنا ہوتا ہے. آج رہا ہوں تو پانچ داری اس کا بناش نہیں ہوتا. تو ابھیناشی باپ سے ابھیناشی گیان رتنوں کا دان جو لیتے ہیں وہی ابھیناشی گیان رتنوں کا دان کریں گے. وہ شاستر جو سناتے ہیں اس کو گیان سمجھتے ہیں. دیہداری دھرم گرو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو شاستر بیٹھ کر کے بنایا ہے وہ ہم دوسروں کو سنا رہے ہیں یہی گیان ہے. اور واسطے میں گیان ہے کیا؟ ज्ञान कहां से आता है? अज्ञान कहां से आता है? ज्ञान आता है डायरेक्ट परमपिता परमात्मा से और बाकी सब से आता है अज्ञान. एक बाप ही सन्मुख बैठ करके जो सुनाते हैं वो है ज्ञान और बाकी सब हो गया अज्ञान. तो वो समझते हैं कि शास्त्र जो हम सुनते हैं वही ज्ञान है. बस समझते हैं यही लाखों की मिल्कियत है. परंतु ये लाखों की मिल्कियत नहीं, कौड़ी की मिसल है. ये कौड़ी है जैसे कौड़ी की कोई वैल्यू नहीं. इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों की दिल में आना चाहिए हमारा बाप शिक्षक है. इस बात का फकुर रहना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला सुप्रीम सोल बाप है, विश्व का बादशाह है और मालिक बनाने वाला वो हमारा सतगुरु भी है. सतगुरु एक और बाकी गुरु क्या होंगे? देर के ढेर गुरु क्या हुए? जब सतगुरु एक कहा जाता है तो बाकी गुरु झूठे होंगे. वो सांस ले जाने वाला है जो सतगुरु. गुरु का मतलब ही है जो सदगति में ले जाए और जो बुद्धि की दुर्गति कर दे. बुद्धि मनन चिंतन मंथन में चले नहीं, दुनियावी बातों में बुद्धि चलने लग पड़े तो दुनियावी धंधे करना दुनियावी गुरु लोग सिखा दे. परमात्मा बाप कोई धंधा ऐसा नहीं सिखाते हैं जिससे पतन हो, दुनिया में बुद्धि लगी. वो तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है. मुक्ति में ना सुख दर्दों की दुनिया से छुटाने वाला, जन्म जरा और मरण की दुनिया से छुटाने वाला, छुटकारा दिलाना मना मुक्ति दिलाना. और जीवन मुक्ति में ले जाने वाला जीवन भी रहे और दुख दर्दों से मुक्ति भी हो जाए, जन्म जरा और मरण के दुखों से मुक्ति हो जाए. तो ये है ज्ञानम. बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो ब्रह्मचारी रहते हैं. ये क्यों कहा? कि यहां भी बच्चों को ये लक्ष्य रखना है कि जब तक पीना है तब तक हमको क्या बन करके रहना है? ब्रह्मचारी बन करके रहना है। अगर ब्रह्मचारी बन करके नहीं रहेंगे, ब्रह्मचारी माना ब्रह्मा आचारी, जो ब्रह्मा का आचरण है वही आचरण हम बच्चों का आचरण, ऐसे कहीं नहीं कहा कि शंकराचार्य, शंकराचार्य बनना है या ब्रह्मचारी बनना है, है तो लेकिन बताया दिया व्यक्तवाणी में कि तुम बच्चों को शंकर को फॉलो नहीं करना है, है जरूर है, जो है उसको अपना पार्ट बजाने दो, उसको अपनी पोस्ट मिली हुई है, तुमको लक्ष्य क्या दिया हुआ है, ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी होकर के जो रहते हैं वो स्कूल में अच्छी पढ़ाई पढ़ते, बुद्धि इधर उधर कहीं भटकती नहीं। अगर गंदे हो जाते हैं तो पढ़ाई उनकी ठंडी हो जाती है। हाँ, ब्रह्मा के बाद क्यों आते हैं, ब्रह्मा में भी पार्ट बजाने वाला कौन है, उसमें भी तो ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाला शिव ही था ना, उसने कर्म करके दिखाया कि ऐसे बच्चों को कर्म करना है, तो वो पार्ट करणहार है, करावनहार का पार्ट वो नहीं है, बच्चे करें या न करें ये नहीं देखता कि बच्चे क्या कर रहे हैं, लेकिन वो अपने को देखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर्म करूं जो मुझे देख करके बच्चे फॉलो करें, तो ब्रह्मा का पार्ट हुआ करणहार का पार्ट, और फिर करणहार का पार्ट करणहार के बाद करावनहार का पार्ट भी गाया हुआ, क्या कहते हैं करण करावनहार, पहले कौन सा करणहार, तो पार्ट बजा के दिखाया। अब उसके बाद जिन बच्चों ने अपने में सुधार नहीं लाया या परसेंटेज में अपने को सुधार सके, तो बाप तो सुधारने के लिए आया, सहज रीति से नहीं सुधरेंगे तो क्या करेगा, अच्छा सीधी तरीके से नहीं मानते हो तो चलो उल्टी चाल चलेंगे, सुधरना तुमको जरूर पड़ेगा, तब फिर वो ऐसा पार्ट चलता है जो बच्चों की बुद्धि में भी नहीं आता, बच्चे बार बार कंट्रास्ट करते हैं क्या है? ब्रह्मा के तन में तो बाबा ऐसे ऐसे पार्ट बजाता था, और ये फिर कैसा बाबा आया हुआ, तो ये पता नहीं है कि ये करावनहार का पार्ट है, खुद करे या ना करे लेकिन तुम बच्चों से जरूर कराएंगे, तो हम बच्चों से कराएगा, खुद करने के लिए बांधा हुआ नहीं है, इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं कि गुरु जो कुछ करे वो नहीं करना, लेकिन गुरु जो डायरेक्शन दे उस डायरेक्शन को फॉलो करना, तो भक्ति मार्ग में आज भी ये बात चली आ रही है, ये कहाँ की बात, ये है संगम युग की बात, इसलिए मुरली में भी बोल दिया तुम बच्चों को ब्रह्मा को फॉलो करना, क्या लॉकेट में ये वाक्य है, तुम बच्चों को ब्रह्मा को फॉलो करना है लेकिन बात मेरी मानना है, माना डायरेक्शन किसका मानना है, शिव बाबा का जो परमात्मा पार्ट है उसका डायरेक्शन मानना है, और फॉलो किसको करना है, कर्मों में ब्रह्मा को, कर्मों में फॉलो करना अलग बात और डायरेक्शन को फॉलो करना अलग बात, डायरेक्शन किसका फॉलो करना है, जो डायरेक्ट बाप आया हुआ है निराकारी स्टेज वाला उसके वर्सन्स को फॉलो करना है, वो जो डायरेक्शन देता है सन्मुख आकर के वो डायरेक्शन जरूर फॉलो करने, और कर्म कैसे करना है, जैसे कर्म ब्रह्मा ने किए वैसे कर्म करना है, तो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं तो ब्रह्मचारी रहते हैं, अगर गंदे हो जाते हैं तो उनकी पढ़ाई ठंडी हो जाती है, बुद्धि एकदम मलिन हो जाती है, तो ये तो ब्राह्मणों के जीवन की प्रैक्टिकल अनुभव की बात है कि जब भिखारी बनते हैं तो बुद्धि में से ज्ञान उड़ जाता है, और जिस समय हमारी पवित्रता की स्टेज अच्छी रहती है उस समय बुद्धि में मनन चिंतन मंथन भी अच्छी रीति चलता है, तो ये है रूहानी विद्या, ये कोई जिस्मानी विद्या नहीं है। जिस्मानी विद्या पढ़ी जाती है जिसम के पोषण के लिए, शरीर का पोषण करना सिखाती है, और ये है रूहानी विद्या। शरीर का संबंध इस लाइफ से है, एक जन्म से, और रूह का संबंध अनेक जन्मों से। तो कौन सी पढ़ाई का महत्व हुआ? ये जिस्मानी पढ़ाई का महत्व नहीं हुआ, क्योंकि वो एक जन्म से ही कनेक्टेड है। रूहानी पढ़ाई अनेक जन्मों की है, और वो सिर्फ सुप्रीम रूह ही पढ़ा सकता है। रूहानी पढ़ाई मनुष्य गुरु ये पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते। ब्रह्मचर्य में रहने बगैर धारणा नहीं होगी। धारणा भी कब होगी? जब ब्रह्माचारी बनेंगे तो धारणा होगी। अगर शंकर को कर्म में फॉलो कर लिया, माना उल्टा कर लिया, तो क्या होगा? तो धारणा नहीं होगी, बजाय दैवी गुणों की धारणा की।